الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورة المؤمنون کی تفسیر میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں آیت نمبر 56 کی جو ابھی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں خلاصہ تفسیر بھی کل کی کلاس میں تقریباً آدھی سے زیادہ پڑھ لی تھی تو جس آیت کی خلاصہ تفسیر میں تفسیر پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو جو انسان پیدا کیے تھے آدم اور حوا رائٹ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور ہدایت کے اوپر تھے اور نیک متقی انسان تھے پھر ان کی اولادیں ہوئیں ان کی اولادوں میں سے ایک اولاد کے بارے میں ہمیں پتہ ہے قابیل کے جس نے قتل والا بہت بڑا گناہ کر دیا تھا ٹھیک ہے کافر نہیں ہوا تھا لیکن قتل والا کافر کا نہیں پتہ ہمیں لیکن قتل والا گناہ اس نے کیا تھا اپنے بھائی کا تو اس طریقے سے گناہ کی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی تھی اور پھر یہ چیز تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھتی رہی حتیٰ کہ انسانوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی اور جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو اس دین کی پھر اپنی اپنی شکلیں بنانی شروع کر دیں اپنے اپنے اس کے اندر بدعات اور خرافات شامل کرنی شروع کر دیں ٹھیک ہے یعنی دین کو بدلنا شروع کر دیا اس کے اندر نئی نئی چیزیں اور غلط غلط چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی شروع کر دیں تو اس طریقے سے پھر انسانوں کے مختلف فرقے بن گئے کوئی کسی سیٹ آف بدعات کو ماننے والا بن گیا کوئی کسی دوسری سیٹ آف بدعات کو ماننے والا بن گیا اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کے اندر خوش رہا کہ بس میرا ہی طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا کیونکہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ ہر دور ہر زمانے میں بھیجتے رہے اور وہ لوگوں کو ان بدعات کی حقیقت بتاتے رہے کہ یہ سب غلط ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے تم ان سب کو ترک کر دو لیکن جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا تو وہ اپنے ہی طور طریقے کے اندر خوش رہے ٹھیک ہے کہ بس یہی صحیح ہے تو اسی کو فرماتے ہیں کہ اس کے باطل ہونے کے باوجود اسی کو حق سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ فرقہ تو آپ ان کو ان کی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے فذرہم فی غمرتہم حتی حین ایک خاص مدت تک رہنے دیجئے یعنی ان کی جہالت پر آپ غم نہ کیجئے یعنی اتنا زیادہ غم نہ کیجئے ایسے نہیں کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے بالکل جو ہے وہ آپ سنگ دل ہو جائیے کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کی وجہ سے نہیں ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے رائٹ نبی علیہ السلام کو بہت کو غم ہوتا تھا فکر ہوتی تھی تو لیکن اس فکر میں جب نبی علیہ السلام بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے تو پھر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کراتے تھے کہ آپ اس فکر کو بھی جو ہے نا وہ اعتدال میں رکھیے ٹھیک ہے جب مقرر وقت ان کی موت کا آ جائے گا تو سب حقیقت کھل جائے گی اور اب جو فوری طور پر ان پر عذاب نہیں آتا تو کیا اس سے یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام جو ہے نا وہ انسان کا جو مربی ہوتا ہے تربیت کرنے والا جس کو شیخ بھی کہتے ہیں، فارسی زبان میں اس کو پیر بھی کہتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر بھی یہی لفظ فارسی سے آیا پیر، تو پیر، شیخ، مربی، انگریزی میں اس کو مینٹور کہتے ہیں، مینٹور، MENTOR، ٹھیک ہے؟ تو یہ مینٹور کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اعتدال سے آگے یا اعتدال سے پیچھے اپنے زیر تربیت انسان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو پھر یاد دہانی کرا دیتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ کوئی تسلی والا لفظ کہہ دیتا ہے، کوئی اطمینان، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم بھی کسی مربی کے ساتھ جڑ کے رہیں، رائٹ، اپنے مینٹور کے ساتھ ایک تعلق بنا کر کے رکھیں، تو ہمارے اوپر بھی یہ کیفیت آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار وہ عجیب و غریب قسم کی الٹی سیدھی باتوں کے اوپر بلیف کر کے بیٹھے ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا خیالی پلاؤ بنائے ہوئے، حالانکہ حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے، حالانکہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں، بالکل ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو الٹی سیدھی خبریں پھیلی ہوئی ہیں تو ان خبروں کے اوپر اعتماد کر کے کسی کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمانی میں مبتلا ہو گئے اور کسی کے بارے میں بہت زیادہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے، رائٹ، اچھے اچھے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو گئے اور ایسی جو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں خوشگمانی میں مبتلا ہو گئے، تو ہمیں بھی بڑی بڑی فکر ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ہو گئے تو اب ان کا کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، اب آخرت میں کہیں مسئلہ خراب نہ ہو جائے، تو اس فکر کے ساتھ ہم بھی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی اپنے شیخ کو یہ بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں، تو ہمارے شیخ بھی اسی طریقے سے نہیں، ڈونٹ وری، فکر نہ کرو، حالانکہ شیخ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم فکر کرو، کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو صحیح غلط کا فرق بتاؤ، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فکر کے اندر جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ایکسیڈ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کہیں ان کا جو کام ہے وہ کام متاثر نہ ہو جائے، رائٹ، تو پھر وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بس ایسے ہی ایک غبارہ ہے، غبارے کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے اور اس ہوا کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہاں جیسے کہ بڑی بہت بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس غبارے کے اندر سے ہوا نکل جائے گی، اس غبارے کے اندر سے ہوا نکل جائے گی، یہ چند دن کی بات ہے، یہ سوشل میڈیا کا دھوکہ ہے اور اس کی کوئی گہرائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اس کی جو ہے نا وہ ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ دوام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے وہ تسلی کے الفاظ بول دیتے ہیں اور ہم پھر الحمدللہ مطمئن ہو کر کے اپنے اصل کام میں لگ جاتے ہیں، رائٹ، تو یہ ہے سسٹم اس دنیا کا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو سلسلہ ہے نا تربیت کا، یہ یاد دہانیوں کا، یہ سلسلہ انسان کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے، جو بھی اپنے آپ کو تربیت کے اس نظام کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے تو وہ افراط اور تفرید سے بچا رہتا ہے، افراط سے اور تفرید سے بچا رہتا ہے، یعنی ایکسٹریم سے بچا رہتا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر بالآخر چلتا ہی رہتا ہے، اور جس کی زندگی کے اندر ایسا کوئی تربیت کا نظام نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنے حساب سے کبھی کسی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، زیادتی کے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کمی کے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں ایکسٹریم جو ہیں یہ اس کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، اور یہ چلا جاتا ہے کا جو لفظ استعمال کیا تو چلا جاتا ہے سے مراد یہ نہیں کہ وہ خود بخود چلا جاتا ہے، بلکہ شیطان جو ہے وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ کے لے کے جاتا ہے، شیطان اس کو کھینچ کے افراط یا تفریط کے اندر مبتلا کرتا ہے، کیونکہ یہی انسان کے ہلاکت کا طریقہ ہے، ہلاکت کا یہی 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 ذریعہ ہے کہ اس کو افراط اور تفریط میں مبتلا کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری اگر ضرورت نہیں مان رہے تو مجبوری ہی سمجھ لیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسے ایک نظام کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، تو بھائی ہماری پھر مجبوری نہ ہوئی تو اور کیا ہوئی، हमारे परवरदिगार का, हमारे रब का ये पसंदीदा निज़ाम है इंसान के लिए, और हम समझें कि जी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसके बगैर ही जो है वो ठीक रहेंगे और ठीक मरेंगे भी ठीक, जिएंगे भी ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलत फहमी है, और इस गलत फहमी का वबाल बहुत ज्यादा संगीन भी हो सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो ये मिसाल अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं ना, ये हमारे लिए हिदायत नामे, ये हमारे लिए हिदायत है, ये हमारे लिए लेसन है, हम इनके ऊपर से अंधे और बहरे की तरीके से गुजरना जाया करें। राइट, अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जैसे यहाँ पर सिफात बयान करी है ना कि कद अफलहल मोमिनून, कि ईमान वाले जो हैं वो कामयाब होते हैं, तो उनकी ये सिफात बयान करी, तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और भी मुकामात के ऊपर ईमान वालों की सिफात बयान करी हैं। सूरह फुरकान गालिबन दो रमजान मुबारक पहले इसी तरीके से की जो हमारी क्लास हुई थी वो सूरह फुरकान के ऊपर हुई थी, तो आपको पता है कि सूरह फुरकान के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सिफात बयान करी है, इबादुर रहमान व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, है ना। तो इबादुर रहमान अपने खास बंदों की ये सिफात बयान करी, तो उन सिफात में से एक सिफत क्या बयान करी, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयात रब्बिहिम, कि जब उनके सामने उनके रब की आयात निशानियां बयान की जाती हैं, लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मं व उम्याना, तो ये उन बातों के ऊपर बहरे और अंधे होकर के नहीं गुजरते, यानी बस एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया, या ऐसे देखा कि जैसे देखा ही नहीं, ऐसे देखा कि जैसे देखा ही नहीं, तो गोया कि अंधा बन करके आपने देखा। तो इबादुर रहमान की सिफतों में से एक सिफत ये भी है कि अपने रब की आयात के ऊपर वो बहरे अंधे होकर के नहीं गुजरते, यानी उनको उनके ऊपर गौर करते हैं और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या ये मेरे ऊपर किस तरीके से अप्लाई होती है, क्या मैं इस गलती में मुब्तला तो नहीं हूं जिस गलती का अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर जिक्र फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो कॉन्वर्सेशंस हुई है ना, ये कॉन्वर्सेशंस कि आप ऐसे ना कीजिए, आप ऐसे ना कीजिए, ये अपने कुरान का हिस्सा बनाई है, तो किसी वजह से हिस्सा बनाई है। तो फरमाया कि यानी उनकी जहालत पर आप गम ना कीजिए, जब मुकर्रर वक्त उनकी मौत का आ जाएगा तो सब हकीकत खुल जाएगी, और जब और अब जो फौरी तौर पर उन पर अजाब नहीं आता, यानी हम जो कुरान को इग्नोर करते हैं, कुरान की हिदायत को इग्नोर करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई आसमान टूट करके तो नहीं गिर जाता, हमारे ऊपर कोई आसमान से जो है वो बिजली आकर के हमें जला के भस्म तो नहीं कर देती भस्म, या हमें कोई और इस किस्म की बड़ी मुसीबत जो है वो ऐसे तो नहीं कि भाई इधर हमने इग्नोर मारा, है ना, कुरान की आयत को, कुरान की तरफ से जो हमें एक मैसेज मिला अपने मशायख के वास्ते से, एक मैसेज मिला, एक हिदायत नामा मिला, इधर हमने इग्नोर किया, उधर से एक थप्पड़ पड़ा, उधर से एक घूंसा पड़ा, उधर से एक लात पड़ी, ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ, वैसे ही उनके साथ भी नहीं होता था, नबी अलैहिस्सलाम की बात को इग्नोर करते थे, कोई लाते मुक्के नहीं पड़ते थे उनको, कोई पत्थर आकर के जो है वो इनको लगते नहीं थे, राइट, वो समझते थे कि हम पर अजाब नहीं आ रहा, तो क्या इससे ये लोग यूं गुमान कर रहे हैं कि हम उनको जो कुछ माल और औलाद देते हैं, यानी सब सेट चल रहा है, सब ठीक है, सब सेट है, माल भी चल रहा है, नौकरी भी चल रही है ना, और औलाद भी चल रही है, और पिकनिक पार्टीज भी चल रही है, सबका सब चल रहा है, तो वो लोग ये समझते हैं कि हम उनको जो ये औलाद और माल देते हैं तो हम उनको जल्दी जल्दी फायदे पहुंचा रहे हैं, ये बात हरगिज नहीं है, ये बात हरगिज नहीं है, बल्कि ये लोग इस ढील देने की वजह नहीं जानते, ये दरअसल ढील है, ये अल्लाह ताला की रजा की अलामत नहीं है, खुशी की अलामत नहीं है कि हमारे पास जो है वो अच्छे अच्छे घर भी हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियां भी हैं और हमारे हालात जो है वो ओवरऑल जो है वो ठीक है, बस एक आध छोटी छोटी सी कोई मुसीबत आई हुई है, किसी का बीमारी आई हुई है, किसी का कुछ आया हुआ है, ठीक है, तो ये ढील देने की वजह नहीं जानते, यानी ये ढील तो उनको बतौर इस्तिदराज के दी जा रही है, जो अंजामे कार उनके लिए और ज्यादा अजाब का सबब बनेगी, क्योंकि हमारी मोहलत और ढील देने से ये और मगरूर होकर सरकशी और गुनाहों में ज्यादती करेंगे और अजाब ज्यादा होगा। ठीक है ना, वो रस्सी जो है वो खिंचती रहती है खिंचती रहती है, और इंसान समझता है कि उसके हालात जो है बहुत अच्छे हैं, फिर एकदम से रस्सी को जो है वो खींच लेते हैं, एकदम से रस्सी खिंचती है और उसके बाद जो है ना वो बंदा जमीन पे आकर के पड़ता है, उसकी मैं जो है ना फिर उसके बाद टूटती है, और फिर उस मैं के टूटने का तमाशा पूरा पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मशायख फरमाते हैं कि अपनी मैं को खुद तोड़ दीजिए, अपनी मैं को खुद तोड़ लीजिए। क्या मतलब? यहाँ पर मैं को तोड़ लेने का मतलब कि ये जो हमने अपना एक एटीट्यूड बनाया हुआ है ना, मैं ना मानूं, मैं नहीं मान के दूंगी, मैं नहीं मान के दूंगा, चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम उल्टे लटक करके भी मुझे नसीहत करो ना, तुम चाहे जो है वो आसमान के सितारे तोड़ के ले आओ, मुझे बात समझाने के लिए 10,000 दलीलें भी ले आओ ना, मैं नहीं मान के दूंगा तुम्हारी बात, मैं ना मानू। ये जो मैं ना मानू होता है ना, ये फिर इसी को मैं कहते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत फिर उसके बाद इंसान के लिए मुश्किल हो जाती है। आगे मारिफ मसाइल में मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहर रुसुलु कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ये लफ्ज तय्यिबात के लुग़वी मानी हैं पाकीज़ा नफीस चीजें, और चूंकि शरीयत इस्लाम में जो चीजें हराम कर दी गई हैं ना वो पाकीज़ा हैं ना अहले अकल के लिए नफीस व मरगूब। ठीक है ना, यानी जो अकल इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं तो हराम चीजें जो है ना उनके लिए ना तो यानी नफीस है यानी पाकीज़ा अच्छी और प्रेज वर्दी, और ना मरगूब। के मरगूब का मतलब क्या कि जिसकी तरफ उनकी रगबत होती हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना ये पाकीज़ा और मरगूब ये है ही नहीं, कि रगबत के काबिल ही नहीं है ये चीजें ना। ठीक है, जैसे सुअर, सुअर का गोश्त जो है वो हराम करार दिया। अब सुअर जो है ये एक इंतहाई गलीज जानवर है, इसके अंदर कुछ ऐसी सिफात हैं जो कि किसी दूसरे जानवर के अंदर भी नहीं है, वहशी दरिंदों के अंदर भी वो वाली सिफात नहीं है जो कि सुअर के अंदर है। राइट, तो उसकी इतनी गलीज चीज है कि उसकी तरफ एक सहीहुल फितरत इंसान की तबीयत जो है ना वो माइल हो ही नहीं सकती, तो फिर इतने हजारों लाखों लोगों की तबीयत कैसे माइल हो जाती है उनकी उसकी तरफ, के पोर्क खाते हैं, बेकन खाते हैं, और सॉसेजेस जो है वो उसके यानी स्वाइन मीट के बने हुए खाते हैं, कैसे? क्योंकि फितरत बिगाड़ दी होती है, फितरत बिगाड़ दी होती है। ठीक है, तो इस वजह से उनको उनको वो मरगूब लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन सलीमुल फितरत के लिए ये चीजें मरगूब होती नहीं है। उसी तरीके से शराब भी और इसी तरीके से दूसरी खाने की चीजें भी। इसलिए तय्यबात से मुराद सिर्फ हलाल चीजें हैं जो जाहिरी और बातनी हर एतबार से पाकीज़ा व नफीस हैं। यानी यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कुलू मिन तय्यबात लिखा ना, कुलू मिन यानी ये हलाल का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, तय्यबात का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो कोई ये ना समझे कि अच्छा तय्यबात चीजें जो है ना वो अगर आप बहुत साफ सुथरी बोतल के अंदर, चमकती हुई बोतल के अंदर और बड़ा दिलरुबा लेबल के साथ शराब बेचेंगे तो ये तो कोई गंदी चीज तो नहीं लग रही है ना, तो चूंकि ये तय्यब लग रही है तो इस वजह से इसको पिया जा सकता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला जो है वो हलाल का जिक्र नहीं कर रहे बल्कि तय्यब का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो शैम्पेन है ये तो बड़ी तय्यब शैम्पेन होगी भाई, है ना भाई, तय्यब शैम्पेन, तो तय्यब शैम्पेन कोई नहीं होती, इसलिए कि तय्यब की तारीफ जो है ना वो हलाल के अंदर बनती है। ठीक है, अगर हलाल नहीं है तो तय्यब भी नहीं हो सकती। इस आयत में ये बताया गया है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने अपने वक्त में दो हिदायात दी गई हैं, एक ये कि खाना हलाल और पाकीज़ा खाओ, और दूसरे ये कि अमल नेक सालेह करो। ठीक है, यानी ये मुकाम कैसा है कि यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, राइट, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा कि मुसलमानों ईमान वालों, बल्कि खास जो है ना वो रसूल का तज़किरा किया, رسولوں کا تذکرہ کیا، یا ایہ الرسل، یعنی یہ خواص کو خطاب کیا جا رہا ہے، خاص لوگوں کو جو کہ رسول ہیں. اور جب انبیاء علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ عقلی دلیل استعمال کر رہے ہیں کہ جب انبیاء کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ جو کہ معصوم بندے ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب کیا کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہوں سے پاک، ٹھیک ہے، جو عصمت و عفت کے پتلے ہوتے ہیں، کے نمونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے، وہ بے شک اپنی ماں کو تھپڑ مار دے لیکن اس کا تھپڑ جو ہے نا وہ گناہ بنے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، اس کے اوپر تو گناہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں لیکن گناہ لکھا نہیں جاتا، نہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی بھی ہے نا تو وہ غلطی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ جائز کاموں کے لمٹس اور باؤنڈریز کے اندر ہی ہوتی ہے، ناجائز کی طرف وہ التفات کرتے ہی نہیں ہے بلکہ جائز کے اندر ہی. جائز کے اندر کیسے غلطی ہو جاتی ہے؟ جائز میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بھائی جائز کام جو ہوتے ہیں نا ان کے بھی لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول، ایک ہوتا ہے درجہ کہ زیادہ ترجیح والا طریقہ، کوئی کام کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ، ٹھیک ہے نا، زیادہ پسندیدہ طریقہ. اور ایک جائز طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا بہترین سے کم، رائٹ، کم بہترین طریقہ، ٹھیک ہے نا. تو زیادہ بہترین طریقہ اور کم بہترین طریقہ، ٹھیک ہے. تو انبیاء کی غلطی اگر ہوتی بھی ہے یا ہوئی بھی ہے تو وہ کیا کہ سب سے بہترین طریقے کے مقابلے میں انہوں نے کم بہترین طریقے کے اوپر عمل کر لیا، بس یہی ان کی غلطی کرائی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر ان کی سرزش کری اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو کوئی تنبیہ کری، آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو انہوں نے کیا وہ بھی جائز ہی کی حدود کے اندر کیا، اس کو خلاف اولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اولا مطلب دا ہائیسٹ، اور خلاف اولا کا مطلب لیس دین ہائیسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو ان کی امت کے لوگوں کے لیے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے، اور اصل مقصود بھی امتوں ہی کو اس حکم پر چلانا ہے، کیونکہ انبیاء تو پہلے ہی حلال و طیب ہی کھاتے ہیں. تو یہاں پر یعنی بواسطہ انبیاء امتوں کو اصل میں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ان کے ماننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. لفظ امت کے اوپر تھوڑی بات ابھی کریں گے، آگے لفظ بھی آ رہا ہے اس کا. تو علماء نے فرمایا کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے. جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو انسان کھاتا ہے نا تو اسی سے انسان کے باڈی سیلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی سے انسان کے اعضاء اور جوارے، اس کے لمز بنتے ہیں، اس کی زبان بھی تو باڈی سیلز ہی کا ایک مجموعہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو ہم کھاتے رہتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ ہماری زبان کے اندر بھی پھر پرانے باڈی سیلز جو ہیں وہ ڈسٹروئے ہوتے رہتے ہیں. یہ کیٹابولزم اور اینابولزم کا پروسیس مستقل چل رہا ہوتا ہے ہمارے اندر، جس کو ملا کے میٹابولزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پرانے باڈی سیلز جو کہ حلال غذا سے آپ نے کھائے تھے تو وہ باڈی سیلز جو ہیں وہ تو برن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اب آپ نے اگر حلال غذا کھانی چھوڑ دی، اب آپ نے حرام غذا کھانی شروع کر دی، تو اب آپ کے جو نئے باڈی سیلز پرانے کو ریپلیس جو کر رہے ہیں وہ حرام غذا سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جس غذا سے پھر وہ باڈی سیلز بنتے ہیں نا تو اس کا اثر جو ہے وہ ان سیلز کے اوپر آتا ہے. اب ان سیلز کا مجموعہ جو وہ آرگن ہوگا تو اس آرگن کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل نہیں ہوگی، اس وجہ سے پھر سچ بولنا مشکل ہو جائے گا اس زبان سے جو زبان اب حرام غذا کے ذریعے سے بنی ہے، ٹھیک ہے. توبہ مشکل نہیں ہوتی لیکن سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو توبہ اسی وجہ سے نا، توبہ کے لیے انسان کو زبان بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بغیر زبان استعمال کیے ہوئے دل کا ارادہ، دل میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت، कि अब मैं नहीं करूंगा, गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, और कुछ जो है वो इसका एहतमाम कर लेना, इससे जो है इंसान की तौबा हो जाती है। अब आइंदा जो है वो हराम खाना छोड़ देगा या हराम खाना कम कर देगा, तो उसके बॉडी सेल्स जो है वो फिर से रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे भाई, राइट। अब हराम के बॉडी सेल्स जो है वो हलाल के बॉडी सेल्स से रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि जी अब हराम खा रहा हूं और ये सब कुछ अब तो तौबा भी नहीं कर सकता। नहीं, तौबा कर सकते हैं उसके बगैर। अमल करना एक अलग चीज होती है, तौबा करना एक अलग चीज होती है। यहाँ पर अमल की बात हो रही है, ठीक है। तो गिज़ा हराम हराम हो तो नेक काम करने का इरादा करने के बावजूद भी इसमें मुश्किलात हायल हो जाती हैं। हदीस में है कि बाज लोग लंबे लंबे सफर करते हैं और गुबार आलूद रहते हैं, फिर अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं और या रब पुकारते हैं, मगर उनका खाना भी हराम होता है, पीना भी, लिबास भी हराम से तैयार होता है और हराम ही की उनको गिज़ा मिलती है। ऐसे लोगों की दुआ कहाँ कबूल हो सकती है। ने सराहतन इस तरीके से बताया। इससे मालूम हुआ कि इबादत और दुआ के कबूल होने में हलाल खाने को बड़ा दखल है। जब गिजा हलाल ना हो तो इबादत और दुआ की मकबूलियत का भी इस्तेहकाक नहीं रहता, ठीक है। तो इंसान अपने तौर पर मुकम्मल कोशिश करे कि वो हलाल गिजा खाए, ठीक है, और हलाल आमदनी का एहतमाम करे, ठीक, ताकि उसके उसके जो 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 लिबास हैं, उसके जो रहने का इंतजाम है, ये सब जो है वो हलाल हो, उसके औलाद के लिए भी हलाल का इंतजाम हो सके, ठीक है। तो ये एक पूरा चैप्टर है ना हमारे दीन का, और इस चैप्टर के बारे में हमें बहुत ज्यादा फिक्र करने की भी जरूरत है। वह इन हाजही उम्मतुकुम उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, ठीक है, कि ये तुम्हारी जो उम्मत थी ना, ये एक वाहिद उम्मत थी। तो इसके तहत हजरत देखते हैं कि लफ्ज उम्मत एक जमात और किसी खास पैगंबर की कौम के मानी में मारूफ व मशहूर है, और कभी ये लफ्ज तरीके और दीन के मानी में भी आता है, जैसे कुरान की एक आयत, वजदना आबाना अला उम्मा। इसमें उम्मत से मुराद एक दीन और तरीका है, कि हमने पाया अपने बाप दादाओं को एक तरीके के ऊपर, एक दीन के ऊपर। तो यहाँ पर इस आयत में भी यही मुराद दिए जाएंगे, यही मानी इस जगह भी मुराद है, ठीक है। तो उम्मत का जो लफ्ज है वो इंसानों के एक एक ग्रोह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी खास या तो जमाने में रहते हों, ठीक है ना, एक ही जमाना उन उन लोगों का हो, तो इस बुनियाद पर भी लोगों को उम्मत कहा जा सकता है, या ये कि किसी खास इलाके में रहते हो, तो इलाके की बुनियाद पर भी उम्मत कहा जा सकता है कुछ लोगों को, कि भाई ये यानी एशिया के रहने वाले, तो ये उम्मत एशिया है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना भाई, उम्मत यूरोप इस तरह की, क्योंकि इनका इलाका एक है, इनका इनका जो है, ठीक। लेकिन ज्यादातर जो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो ये एक दीन पर चलने वालों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिनका नजरिया हयात एक हो, जिनका सोचने का अंदाज एक हो, ठीक है ना, यानी अकायद, जिनके सोचने का अंदाज मुराद यहाँ पर उनके दीनी अकायद, अल्लाह के बारे में सोचने का अंदाज, ठीक है ना, अल्लाह के फरिश्तों के बारे में सोचने का अंदाज, कि ये फरिश्ते मिसाल के तौर पर हमारा क्या अंदाज होता है, एक मुसलमान का क्या अंदाज होता है फरिश्तों के बारे में, कि फरिश्तों ये जो हैं ये अल्लाह ताला के खादिम हैं, ठीक है, अल्लाह ताला इनके जरिए से काम करवाते हैं, अगरचे के अल्लाह ताला इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा सोचने का अंदाज है फरिश्तों के बारे में, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका के एक सोचने का अंदाज हो इन 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 इल्मुल गैब वाली चीजों के बारे में, तो वो लोग जो है वो एक उम्मत कहलाते हैं, ठीक है। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो कभी कभी हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो है मिल्लत, ठीक है ना, और ये लफ्ज भी इवन कुरान मजीद में भी इस्तेमाल होता है, मिल्लत, है ना, वो मिल्लत ट्रैक्टर्स और मिल्लत फैन वाला मिल्लत नहीं, यानी वहां पर भी वो मिल्लत उन्होंने इसी वजह से इस्तेमाल किया है क्योंकि कुरान मजीद में मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेकिन मिल्लत का मतलब क्या होता है, मिल्लत का मफहूम जो है ना वो उम्मत के मफहूम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ملت کا جو لفظ ہے یہ ایک زمانے، ایک علاقے یا ایک نبی کے ماننے والوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کہ بس کچھ بنیادی اصول و ضوابط جو ہے نا ان کے کچھ سیم ہو، ٹھیک ہے، بنیادی اصول و ضوابط یعنی ان کے درمیان جو ہے نا وہ تھوڑی سی سملیرٹیز ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سملیرٹیز نہیں ہو، جو امت والے لوگ ہیں نا ان کے آپس میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہوتی ہیں، جبکہ ملت والے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ سملیرٹیز نہیں ہوتی، بہت ہی بیسک سملیرٹیز ہوتی ہیں ان کے درمیان، بہت ہی بیسک جو ہے نا وہ یعنی متفق باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنا بڑا مانتے ہیں نا تو ان کے لیے ملت ابراہیم کا لفظ استعمال، ٹھیک ہے، ملت ابیکم ابراہیم واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک ہے، تو یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلاتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلاتے ہیں، ٹھیک، یہ تھوڑا سا یعنی لفظ ملت جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے تو تقریباً اسی طرح کے معنی میں، اس وجہ سے آپ سامنے اس کو بھی رکھ دیا، نبی علیہ السلام کی امت، امت مرحومہ جس کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس امت کے بارے میں کہ کنتم خیر امت، تم جو ہو نا سب سے بہتر امت ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ بھی آگے بیان فرماتے ہیں، اخرجت للناس، جو کہ انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، کیا مطلب کہ تمہارے علاوہ جو انسان ہے نا تمہیں ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو تم لوگ جو ہو نا وہ بڑے بڑے پریفرڈ قسم کے لوگ ہو، بڑے سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس وجہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ وجہ تو ہو گئی، اخرجت للناس، نام بھی تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، اس وجہ سے، لیکن تم کرتے کیا ہو، واٹ میکس یو سو اسپیشل، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہو، یعنی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے مطابق ویسے ایمان لاتے ہو جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، جیسے کہ رسول نے بتایا ہے ویسے ایمان لے کر کے آتے ہو، ٹھیک ہے، تو ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اپنے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہو، یا کسی نے پوچھا ہے کہ ملت میں بنیادی اصول و ضوابط کس حد تک ایک ہوتے ہیں، بنیادی اصول و ضوابط بہت ہی یعنی جیسے اس کی ایک ہی مثال جو مشہور مثال ہے نا وہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ٹھیک ہے، تو اب یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا بنیادی اصول، بنیادی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہے کہ جی ان تینوں کے پاس جو ہے نا جو کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید تو حفظ یعنی حرفن حرفن، لفظن لفظن، معنن معنن محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تورات اور انجیل ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں، اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر محفوظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے تورات کے اندر، انجیل کے اندر کچھ اچھے احکامات ابھی تک موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی احکامات کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. ایک اور بات جو کہ ان کی سچائی، یعنی جتنی سچائی ان کے اندر موجود ہے اس سچائی کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی لیٹس سے تورات اور انجیل کے اندر جو ہے وہ اب جیسے 40% سچائی رہ گئی، ٹھیک ہے نا، تو اب اچھے اچھے باتیں، تو بھائی اچھے اچھی باتیں تو آپ کو رامائن کے اندر بھی مل جائیں گی، ہے نا، جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھی باتیں مل ہی جائیں گی، ہے نا، جو براہمن ہے ان کی بھی کتابوں کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں مل جائیں گی، तो अच्छी बात है, तो भाई वो चाइनीज जो कन्फ्यूशियस है वो उसकी बातों में भी मिल जाएंगी, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उनकी, तो अच्छी बातों का होना तो ये तो फिर कोई इतना ज्यादा खास बात नहीं है ना, वो तो आपको कहीं भी मिल सकती है। लेकिन इन किताबों के अंदर जो मुस्तकबिल की पेशेन गोईयां हैं, मुस्तकबिल की पेशेन गोईयां यानी आखिरी जमाने के अंदर जो हालात होंगे उनकी जो पेशेन गोई है ना, वो इनके अंदर अभी तक महफूज है, वो अभी तक इनके अंदर महफूज है, ठीक है, तौरात और इंजील के अंदर। इसी वजह से जो हमारे जो जो हदीसे मुबारका से हमें आखिरी जमाने के हालात पता चलते हैं ना, राइट, इनका भी जो तसव्वुर है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है उनसे, कि आखिरी जमाने में क्या होगा, एंटाई क्राइस्ट क्या होगा, एंटाई क्राइस्ट की मुखालफत करने वाले लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या वाकयात पेश आएंगे, बहुत कुछ इनके पास अभी भी महफूज है अपनी किताबों के अंदर। इन चीजों को उन्होंने बदला तो खैर है लेकिन बिल्कुल ही खत्म नहीं कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एक मिल्लत है, इस मिल्लत के दरमियान ये एक बुनियादी यानी कॉमनैलिटी है कि इनकी किताबें जो है ना ये महफूज हैं, है ना, कुरान 100% और तौरात और इंजील जो है वो कह ले 40%, 30%, 25%, ये तो हमने ऐसे एक अंदाजे से बात कर दी, लेकिन महफूज है। बाकी जो किताबें हैं जो कि आपके जोरोएस्ट्रियन, जोर क्या हमसे पढ़ने में मुश्किल होती है, बोलने में मुश्किल होती है, जोरोएस्ट्रिज्म शायद, क्या बहुत ही मुश्किल वर्ड है ये, मुस्तनसन हुसैन ताड़र की तरह का एक वर्ड है जो कि मुंह से निकलता ही नहीं है, खैर वो भी एक रिलीजन है, ठीक है ना, और वो भी एक सो कॉल्ड तौहीद की ही बुनियाद के ऊपर रिलीजन है, वो भी आज भी महफूज है, लेकिन उसकी किताब जो है ना वो तो बिल्कुल ही यानी तो कहते हैं ना उसके तो हुलिया ही खत्म हो चुका है। उसी तरीके से हिंदुइज्म, हिंदुइज्म भी जो है भाई पीछे तो सबके ही रसूल थे ना, राइट, अल्लाह ताला जब ये फरमाते हैं ना कि वा इन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नजीर, हमने कोई उम्मत नहीं भेजी सिवाय उसके कि उसके अंदर एक डराने वाला भेजा। तो भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई डराने वाला नहीं भेजा, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के अंदर भी डराने वाले आए, चीन में भी आए, रूस में भी आए, और अगर ऑस्ट्रेलिया में तो खैर इंसान नहीं बसते थे उस जमाने में, लेकिन जहां जहां इंसान होते थे हर हर जगह पर अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, ठीक है ना। तो अब उनकी भी किताबें, उनका भी कुछ ना कुछ इस तरह के रिसाले मौजूद थे, या उनकी कही हुई बातें जो कि इंसानों ने रिकॉर्ड कर ली, बेशक अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी किताबी शक्ल में वही नहीं आई, लेकिन पैगंबर की कही हुई बातें वो इंसानों ने रिकॉर्ड कर ली, वही उनकी आसमानी किताब, वही उनकी जो है वो दीनी किताब बन गई, ठीक है ना। लेकिन उस दीनी किताब को इन्होंने बे इंतहा खराब कर दिया, अब बिल्कुल ही उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया, अब उसके अंदर जो है वो लक्ष्मी देवियां हैं और देवता हैं और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी खराफात उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो वो फिर मिल्लत इब्राहिम के अंदर या इस तरह की मिल्लत में उन लोगों का शुमार नहीं होता, जबकि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का एक मिल्लत के अंदर शुमार होता है। तौहीद, रिसालत और आखिरत को मानते हैं एक मिल्लत वाले, उनकी तफासील और जुजियात में इख्तलाफ है, कहीं पढ़ा था, यानी तो मिल्लत वाले जो हैं वो तौहीद, रिसालत और आखिरत को मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जजाकुमुल्लाह, ठीक है। तौहीद का मतलब वही कि अगरचे के खराबियां तो कर दी होती हैं लेकिन हाँ अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला ने सबको बनाया है वगैरह, और रिसालत को भी मानते हैं। देखें ये बाकी सारे रसूलों को तो मानते हैं ना, ईसाई सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और यहूदी जो है वो भी ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी सारे अंबिया को मानते हैं। तो कितनी बड़ी कॉमनैलिटी है हमारे और उनके दरमियान, ठीक है। चलें भैया को आगे आगे बढ़ते हैं कि हाँ हलाल खाने वगैरह के बारे में बात हो रही। तो अब अगली बात, फतकत्तअू अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ ज़ुबुर है तो ज़बूर की जमा है जो किताब के मानी में आता है, इस मानी के अतबार से मुराद आयत ये है कि अल्लाह ताला ने तो सब अंबिया और उनकी उम्मतों को उसूल और अकायद के मसाइल में एक ही दीन और तरीके पर चलने की हिदायत फरमाई थी, ठीक है ना, यानी ऊपर से जो हिदायत आई है ना वो एक ही हिदायत है, मल्टीपल रास्ते नहीं है, मल्टीपल तरीके नहीं है, ठीक है। मगर उम्मतों ने उसको ना माना और आपस में टुकड़े मुख्तलिफ हो गए, हर एक ने अपना अपना तरीका अलग और अपनी किताब अलग बना ली। और जुबुर, कभी जुबुराह की जमा भी आती है, यानी लफ्ज जुबुर जो है ना उसका वाहिद जो है वो जुबुरा, जुबरा भी होता है, जुबरा, ठीक है ना, इसका वाहिद जबूर भी हो सकता है, इसका वाहिद जो है वो जुबरा भी हो सकता है। अरबी जुबान में ऐसा होता है कि एक ही वाहिद की जो है वो कई जमे भी जमा भी आती हैं और एक जमा की जो है वो कई वाहिद भी होते हैं, जिसके मानी कता कता और फिरके के हैं। यही मानी इस जगह ज्यादा वाजे हैं और मुराद आयत ये है कि ये लोग अकायद और उसूल में भी मुख्तलिफ फिरके बन गए, लेकिन फरूई इख्तिलाफ अइम्मा मुज्तहिदीन का इसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि इन इख्तिलाफात से दीन व मिल्लत अलग नहीं हो जाता और ऐसा इख्तिलाफ रखने वाले अलग अलग फिरके नहीं कहलाते। और इस इज्तिहादी और फरूई इख्तिलाफ को फिरका वारियत का रंग देना खालिस जहालत है, जो किसी मुज्तहिद के नजदीक जायज नहीं है, ठीक है। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने एक यहाँ पर एक अहम गलत फहमी का भी इजाला फरमा दिया, ठीक है। वो ये है कि ये जो उम्मतें मुख्तलिफ हो गई ना, जिनका कि इस आयत के अंदर जिक्र है, तो ये उम्मतें जो है ना वो बुनियादी अकायद मुख्तलिफ होने की वजह से बनी, बुनियादी अकायद, ठीक है। जो फरोई मसाइल होते हैं, फरोई का मतलब क्या होता है, फरो का लफ्ज जो है ना ये फरा से निकला, फरा, ठीक है। फरा जो है ये ब्रांच को कहते हैं, ठीक है। जैसे एक दरख्त है, उसका तना एक ही है, उसकी जड़ एक ही है, ठीक है, लेकिन उस दरख्त के अंदर उस तने में से फिर शाखें अलग अलग निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो शाखें अलग निकलती हैं ना एक दरख्त में से, तो इनको जो है वो फरो कहते हैं, फरा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो इख्तलाफ आपको शाखों के दरमियान नजर आते हैं ना, ये इख्तलाफात जो हैं ये बुरी चीज नहीं है। इसकी मिसाल कैसे है, इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सब ईमान लेकर के आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को सब आखिरी नबी मानते हैं, राइट, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शक्लो सूरत में किसी हालत में कोई भी अल्लाह का नबी नहीं आने वाला है, ठीक है ना, आखिरी खत्म नबूवत के मुकम्मल एतकाद रखने वाले लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों के दरमियान जो इल्मी इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ क्या, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या थी, आदत क्या थी, आदत इज इक्वल टू सुन्नत, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम की आदतें मुबारक क्या थी, इसमें इल्मी इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो सुन्नतें हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो सुन्नतें हैं उनसे, ठीक है ना। उनकी सुन्नत वो फरमाते हैं कि जी मिसाल के तौर पर जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे तो आप अपने हाथों को सीने के ऊपर बांधते थे, ये नबी अलैहिस्सलाम की आदत है, सुन्नत है, ठीक है। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा इकराम के अकवाल देखे, उम्मत का जो है वो अमल देखा, कि सारे लोग जो है वो कैसे, यानी ज्यादातर लोग कैसे नमाज पढ़ रहे हैं उनको देखा, फिर जो है वो यानी अपना इज्तिहाद किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने ना कभी सीने के ऊपर हाथ बांध के नमाज बेशक पढ़ी थी, लेकिन ज्यादातर नबी अलैहिस्सलाम नाफ के ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ा करते थे। तो सुन्नत जो है ना वो ये है, नाफ के ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ना सुन्नत, ठीक है ना। तो अब ये इख्तिलाफ हो गया इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, ठीक है ना, लेकिन बुनियादें दोनों की सेम ही है, बुनियादी अकायद दोनों के सेम है, ठीक है। तो ये जो है ना इज्तिहादी इख्तिलाफ कहलाते हैं, ये फिरके नहीं कहलाते, ठीक है ना। फिरके जो है ना वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ, जैसे मिसाल के तौर तो फिरके का इख्तिलाफ जो है वो दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक तो फिरका ये हो गया ना, यहूदी, इन्होंने अपना एक फिरका बना लिया, ईसाइयों ने अपना एक फिरका बना लिया, ठीक है ना, और दूसरे मजाहब ने, तो इसकी मिसाल दरख्त को अगर हम लेकर के देखें तो इसकी मिसाल ऐसे बनेगी कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि अभी हम कराची में थे, वहां पे हमारे घर के बराबर में एक घर था, है ना, चंद घर छोड़ करके, तो वहां पर एक पपीते का दरख्त लगा हुआ था, है ना। वो पपीते का दरख्त ऐसा इंटरेस्टिंग था, मैं जब गुजरता था ना, बच्चे मेरे साथ होते थे, मैंने कहा ये देखो कैसा मजे का पपीते का दरख्त है, ठीक है। वो ऐसा था कि जैसे कि एक पपाया पपीता, राइट, सबको पता होगा पपीता क्या होता है ना, तो वो जैसे वो एक, 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 एक उसकी तना होता है, उसका पतला सा तना होता है लेकिन जरा ऊंचा सा स्ट्रेट किस्म का तना होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ऊपर जाकर के पपीते लगे हुए थे। अब उसके इस तने में से जो है ना वो एक दूसरा तना निकला हुआ था, ठीक है ना, एक दूसरा तना निकला हुआ था, और उस तने वो अब जब टेढ़ा सा एक तना था, जाहिर वो सीधा तो नहीं हो सकता, सीधा तो जो मेन तना था वही सीधा था स्ट्रेट, ठीक है ना, और दूसरा जो तना निकला हुआ था ना वो बड़ा कर्व्ड किस्म का किंक हुआ हुआ तना था, लेकिन उसके ऊपर भी पपीते लगे हुए, राइट। अब ये जैसे इसके अंदर से एक दूसरा तना निकल गया ना, अब अगर ये तना जो है इसकी भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो नीचे जड़ें वगैरह भी कुछ इसकी होंगी, ठीक है ना कुछ तो होगा ना नीचे। अब अगर लेट से अगर आप इसको काट करके जो है वो अलग जमीन में जाके बो दें, तो अब ये एक इंडिपेंडेंट ट्री बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी कुछ जड़ भी थी, इसका एक तना भी है, अगरचे के टेढ़ा तना है लेकिन है तो ना भाई, और उसके ऊपर जो है वो कुछ फलवल भी लगे हुए, तो अब ये एक अलग से दरख्त बन जाएगा। तो यहूदी ईसाई जो है ना इनका यही मामला है कि ये दीन इस्लाम से इतना ज्यादा मुनहरिफ हो गए कि उन्होंने अपना एक अलग ही दरख्त बना लिया, ठीक है। अब वो एक अपने तौर पर इंडिपेंडेंट जो है ना, वो उनकी जड़ें भी हैं, उनके इंडिपेंडेंट या उनकी बाकायदा बिलीफ सिस्टम एक एक बना हुआ है पूरा का पूरा, उनका पूरा एक तना बना हुआ है, उनका पूरा एक जो है वो उसके अंदर से ब्रांचेज उनकी अपनी, ईसाइयों के भी कितने फिरके होते हैं, यहूदियों के भी कितने फिरके होते हैं, ठीक है ना, तो पूरा इंडिपेंडेंट दरख्त बन गया ये, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये एक ही दरख्त की शाखें नहीं है, अलग ही बना लिया उन्होंने ना। अच्छा ये तो हो गए बिल्कुल, ये अदियान ऐसे हैं, दीन इस्लाम जो है वो उस मेन पपीते के दरख्त जैसा है, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, सिरातल सिरातल मुस्तकीम स्ट्रेट तना, ठीक है ना, और बाकी जो है वो टेढ़े टेढ़े तने इधर उधर वो उन्होंने अपने दरख्त बना लिए। अच्छा कुछ फिरके ऐसे भी होते हैं कि जो के इवन एक ही दरख्त से अभी भी लगे हुए हैं लेकिन वो भी एक तना ही उन्होंने बनाया, जैसे कि ये ओरिजिनली जैसे ये आपको पपीते का दरख्त बताया ना, ठीक है ना, अब ये जुड़ा हुआ है मेन तने से लेकिन इसने अपना तना अलग बना लिया है, काट के अगर उसको आप अलग बो दें तो फिर ये यहूदी ईसाई की तरह बन जाएगा, लेकिन अगर काट के अलग ना बोए तो फिर तो है तो इसी तने के साथ लगा हुआ, अपने आप को मुसलमान ही कहता है, राइट, और काबतुल्ला ही को ही जो है वो किबला कहता है, ठीक है ना, अपना किबला जो है वो काबतुल्ला ही को ही कहता है, उसी तरीके से जो है वो नमाज भी कुछ मिली जुली ऐसी ही पढ़ लेता है, काबतुल्ला की तरफ ही रुख करके पढ़ता है ना, ठीक है। लेकिन इसमें भी अच्छा खासा फर्क हो गया है, जो मेन दरख्त था ना उससे काफी ज्यादा इसने फर्क कर लिया है अकीदों के अंदर भी, ठीक है ना, लेकिन है इसी दरख्त का हिस्सा, लगा हुआ है उसके साथ ही, जोड़ा हुआ है उसने अपने आप को किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी फिरका कहलाता है, जैसे कि अहले सुन्ना वल जमात जो है जो कि सहाबा कराम के इजमा के ऊपर, कुरान हदीस और इजमाए सहाबा के ऊपर जो एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो आमाल करते हैं, वो कौन कहलाते हैं, अहले सुन्ना वल जमात, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने सहाबा का इनकार कर दिया कि नहीं जी ये सहाबा नाउज बिल्ला ये तो सारे के सारे काफिर हो गए थे नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, चार पांच कुछ बचे थे बस, उनके अलावा सारे के सारे नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला काफिर हो गए थे, तो अब ये लोग जो है ये कुरान के ऊपर तो यकीन रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ जी कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, और कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई है ना जो कि हमें उन चार पांच सहाबा के वास्ते से पहुंची है ना जो कि हमारे ख्याल में मुसलमान बाकी रहे थे, वो तो हम हदीसें मानते हैं, ठीक है ना, उनके अलावा जो है ना वो तो हम कहते हैं वो तो हम मानते ही नहीं है क्योंकि वो सहाबा तो फिर मुसलमान ही नहीं रहे थे नाउज बिल्ला, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना ये बिल्कुल एक अलग फिरका कहलाएगा और इसके ऊपर फिर जो उलमाए कराम हैं उनका, यानी इवन कुफर का भी फतवा मौजूद है ना, कुछ का है कुछ का नहीं है, कुछ का जो है वो थोड़ा सा यानी तफसील है उसके अंदर, लेकिन ये एक बहुत मेजर इख्तिलाफ हो गया। लेकिन है वो भी क्या कहते हैं उनको भाई, यानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और क्या वो क़िबला, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए, अहले क़िबला नहीं, अहले क़िबला नहीं ना, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो एक ही क़िबले की तरफ सजदा करते हैं, सुब्हानअल्लाह नहीं आ रहा है। बहरहाल तो वो अहले, हाँ अहले क़िबला ही गालबन कहलाते हैं, अहले क़िबला ही है ये लोग, यानी ये भी काबतुल्लाह की तरफ, उधर ही जाकर के हज भी करते हैं, उधर ही जाकर के उमरा भी करते हैं, वहीं जाए वो तवाफ भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये मिसाल है। अच्छा वो जो यानी मुज्तहिदीन का इख्तलाफ है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तने के अंदर कोई फर्क है ही नहीं, तना एक ही है, वो तना ऊपर जाकर के बस ब्रांच आउट हो जाता है, और वो जो ब्रांचेस है ना उससे तो फिर दरख्त की खूबसूरती बनती है, उसके तो दरख्त के अंदर उससे जो है वो वुसअत आती है। अगर ये तने ना हो तो दरख्त का साया भी ना हो, है ना भाई, ऐसा कोई दरख्त हो जिसके अंदर ना ना तो ऐसे कोई वो लीव्स निकल रहे हो ना कोई तने निकल रहे हो, उसका साया भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसका तो फायदा ही भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना। तो ये जो इज्तिहादी इख्तिलाफात है ना, ये तो रहमत है उम्मत के लिए, ये तो उम्मत के लिए रहमत है, और इसी वजह से जो मुज्तहिदीन है उन्होंने कभी भी इसको जो है ना वो फिरकावारियत का रंग दिया ही नहीं कि जी ये हनफियों ने एक फिरका बना लिया और इस शाफियों ने एक फिरका बना लिया, और नहीं ऐसा कोई, ये कोई फिरका वाला मसला ही नहीं है। आगे फरमाते हैं, आगे की आयात पढ़ लेते हैं, चंद मिनट हम आपसे एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं हर हर दिन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون, कि बेशक वो लोग कि जो अपने रब की के खौफ का अंदेशा रखते हैं, ठीक है, खशियत रब्बहिम, खशिया का मतलब क्या होता है, खौफ, इसको खशियत भी कहते हैं, ठीक है, यानी डरते रहते हैं, ठीक है ना। और मुशफिकून का तर्जुमा जो है वो बस यही है कि यानी उन उनके ऊपर खौफ की हालत जो है ना वो तारी रहती है, हमेशा जो है वो फेयरफुल रहते हैं, ठीक है ना, और मुहतात रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि अपने रब से जो है ना वो यानी एक लिहाज में रहते हैं, और अपने रब का जो है वो मुकाम का ख्याल करते रहते हैं। तो मिन खशियत रब्बिहिम, अपने रब की खशियत की वजह से वो मुशफिकून रहते हैं, अंदेशे में रहते हैं। वल्लज़ीन हुम बिआयात रब्बिहिम युमिन, और वो लोग जो कि अपने रब की आयात को मानते हैं, ठीक है ना, यकीन रखते हैं उनके ऊपर, उनको मानते हैं जो यानी जो रसूल से इन तक पहुंची होती है, ठीक है, तो बेसिकली रसूल की बात मानते हैं, ठीक है। वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो लोग जो के अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते, यानी अपने रब के साथ कोई पार्टनर्स, कोई 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 चीजें एसोसिएट नहीं करते, ठीक है, शरीक नहीं करते अपने रब की खास सिफात के अंदर, ठीक है, किसी को शरीक नहीं करते। वल्लज़ीना युतूना मा आताउ वकुलूबुहुम वजलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो लोग जो के देते हैं जो कुछ वो देते हैं, युतूना वो देते हैं, मा आताउ जो कुछ वो देते हैं, ठीक है ना, वकुलूबहुम और इनके कुलूब जो हैं वजलतुन, डर रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी एक तरह से ना ये लरज रहे होते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, इसलिए कि वो अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने उनको जो एक मोहलत यहाँ पर दी है, तो ये मोहलत जो है ये एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर जवाबदही के लिए हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है ना, रिपोर्ट देने के लिए, ऑडिटिंग के लिए हाजिर होना पड़ेगा, इस बात का इनको हर वक्त ख्याल रहता है, इसी वजह से ना इनके दिल जो है वो कांपते रहते हैं, ठीक है, इनको अपने रब की अजमत का भी कुछ एहसास होता है, ठीक है, ज्यादा या कम लेकिन एहसास होता है जितना ज्यादा एहसास होगा उतना ज्यादा फिक्रमंद रहेंगे, उतना ज्यादा कांपते रहेंगे, उतना ज्यादा जो है वो अलर्ट रहेंगे अपने मामलात के बारे में, ठीक है ना। उलाइका युसारिउना फिल खैरात, वो लोग दौड़ दौड़ कर नेकियां करते हैं, ठीक है ना, नेकियों के अंदर जो है ना वो फुर्ती करते हैं, तेजी करते हैं, ठीक है। सुरत, सुरत का मतलब कभी आप जाए ना ये सऊदी अरब के अंदर, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आप थोड़ा स्लो चला रहे हो, जिस जगह पे तेज चलानी चाहिए, जैसे हाईवे, हाईवे के ऊपर एक स्पीड लिमिट होती है, मिनिमम स्पीड लिमिट भी होती है कि जी आप इतने से कम पे हाईवे में ही चला सकते, तो पीछे से कोई ना वो पुलिस वाला अगर आ गया ना, वो अपनी गाड़ी को आपकी गाड़ी के पीछे लेकर के आएगा और लाउड स्पीकर पे गाएगा, सोरा सोरा तेज चलो तेज चलो, ठीक है। तो वो सोरा सोरा याद रहता है, एक दफे साजिश को भी पड़ी थी पीछे से, तो वो सुरत करते हैं, तेजी करते हैं खैरात के अंदर, खैरात मतलब नेकियां भलाइयां। वहुम लहा साबिकून, और वो उन पर यानी सबकत ले जाते हैं दूसरों के मुकाबले में, साबका यु साबिकू है, सबकत लेके जाते हैं दूसरों के मुकाबले। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक अपना ऐसा यानी कुल्लिया बयान कर दी है कि जो कि हमारी सारे मसलों का हल हो सकती है, ठीक है। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि हम नहीं बोझ डालते किसी भी नफ्स के ऊपर इल्ला वुसअहा, सिवाय जितना के वो उठा सके, ठीक है ना। वुसअत से ज्यादा हम किसी के ऊपर बोझ नहीं डालते, वुसअहा उसकी वुसअत, ठीक है। जैसे बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, इसको कहते हैं मुदाफ मुदाफ इलेही, पोजेसिव कंस्ट्रक्शन, यानी बैत अल्लाह का, ठीक है। अब यहां पर लफ्ज बैत जो है ना, ये किसी का बैत नहीं है, बल्कि जो इसके बाद मुजाफ इलैही लफ्ज बन रहा है, ये उसी का बैत, ये उसी की घर की बात हो रही है, बैतुल्लाह ही, ठीक है ना। लफ्ज बैत लिख दें तो भाई वो किसी का भी घर हो सकता है, लेकिन आप अगर बैतुल्लाह लिख दें तो ये सिर्फ अल्लाह के घर की बात हो रही है, किसी दूसरे के घर की बात नहीं हो रही। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर वुसअत एक लफ्ज है, वुसअत का मतलब कैपेसिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पर अल्लाह ताला ने वुसअहा, हा की जो जमीर है ना, जो प्रोनाउन है हा का, ये इसका नाउन क्या है, नफसन, ठीक है। कि वुसअहा का मतलब कि जिस नफ्स के पीछे बात हो रही है ना, कि हम बोझ नहीं डालते किसी नफ्स के ऊपर, तो उसी की वुसत की बात हो रही है, कि जितनी उस नफ्स की वुसत होती है। क्या मतलब कि हर नफ्स की वुसत अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाई है, हर नफ्स की अपनी एक कैपेसिटी अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक के साथ डिफाइन फरमा दी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो किलोग्राम से नफ्स की वुसत को मेजर करें कि भाई इस नफ्स की जो 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 कैपेसिटी है, वुसत है, वो है 10 किलोग्राम बोझ उठाना, है ना, और किसी दूसरे नफ्स की वुसत अल्लाह ताला ने बनाई है 50 किलोग्राम बोझ उठाना, ठीक है ना। तो जिसकी हमने वुसत 50 किलोग्राम बोझ उठाने की बनाई है ना, हम उसके ऊपर 60 किलोग्राम का बोझ नहीं डालेंगे, ठीक है ना। हाँ, उससे कम तो डाल सकते हैं, 40 किलोग्राम डाल सकते हैं, ठीक है ना, 30 किलोग्राम डाल सकते हैं जिसकी वुसत 50 है उसके ऊपर, लेकिन 50 वाले के ऊपर हम 70 kg नहीं डालेंगे। उसी तरीके से जिसकी वुसत हमने 10 kg बनाई है ना, उसके ऊपर हम 12 kg भी नहीं डालेंगे, 11 kg भी नहीं डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना डालेंगे, 10 kg डालेंगे, ठीक है ना। अब ये बोझ डालने का मतलब क्या, बोझ डालने का मतलब ये होता है जिम्मेदारी लगाना, ठीक है ना, जिम्मेदारी लगाना। और इसका एक और मफहूम भी बनता है, तकलीफ में डालना, क्योंकि जब आप किसी को जिम्मेदारी लगाते हैं तो बेसिकली यही उसके ऊपर बोझ डालना, यही उसको तकलीफ में डालना होता है ना। बोझ उठाना जो है ना, ये तकलीफ ही होती है, ठीक है। तो मफहूम का क्या बना कि हमारे ऊपर, हमारे ऊपर जो भी तकलीफें आती हैं वो हमारी वुस्त के मुताबिक ही आती हैं, उससे ज्यादा कभी तकलीफ नहीं आ सकती हमारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला का ये एक कुल्ली उसूल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल अल्लाह ने बना दिया अपनी मखलूक के लिए, ठीक है। وَلَدَيْنَا كِتَابٌ اور ہمارے پاس ہے کتاب، یعنی لکھا ہوا، یہاں پر کتاب سے مراد مکتوب، لکھی ہوئی چیز، يَنْتِقُ بِالْحَقِّ، جو کہ سچ ہی بولتی ہے. ٹھیک ہے نا، عجیب، اللہ تعالیٰ نے کتاب بنائی جو کہ بولتی ہے، ٹاکنگ آڈیو بک آج کل ہے نا، آڈیو بکس. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی کوئی اس قسم کی آڈیو بک ہے نہیں، لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں لکھی ہوئی، کوئی غلط بات نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو ینتقو بالحق، جو کہ سچ ہی بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی کسی نفس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف ڈال دی، اس سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری دے دی، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا. ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، اگر اس کو کوئی اجر یعنی ملنا چاہیے تھا، تو اگر اس کو اجر نہ دیا جائے تو یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، باقی خلاصہ تفصیل انشاءاللہ کل پڑھنا شروع کر لیں گے، کیونکہ آج کلاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. کسی کو کوئی سوال اگر پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.